एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद थोड़ा जादुई सा लगे।
हाँ, लेकिन है ये बिल्कुल विज्ञान। बात हो रही है प्लेसिबो प्रभाव की।
हाँ, वही प्लेसिबो, जिसे अक्सर लोग बस मन का वहम या कह लीजिए एक मीठी गोली समझकर मतलब किनारे कर देते हैं।
बिल्कुल, पर क्या ये इतना सीधा है? शायद नहीं।
आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे पास है कैथरीन टी हॉल की किताब प्लेसिबोज स्टडीज।
हाँ, ये MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है और बहुत ही अहम किताब है ये।
और ये विषय आज के दौर में बहुत मायने रखता है, नहीं?
क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य, हमारे इलाज के तरीकों
और यहाँ तक कि हमारी सोच का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है उससे जुड़ा है। बिल्कुल, ये किताब हमें दिखाती है कि जिसे हम शायद वहम समझते आए हैं वो असल में हमारी बॉडी की एक एक शक्तिशाली क्षमता हो सकती है।
तो फिर शुरू करते हैं लेखक से ही। कैथरीन टी हॉल है कौन ये?
हाँ, जानना जरूरी है। सिर्फ लेखिका कहना तो मुझे लगता है उनके परिचय के साथ नाइंसाफी होगी।
बिल्कुल, वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और ब्रिगम एंड विमेन्स हॉस्पिटल में मेडिसिन की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
और साथ ही वो प्रोग्राम इन प्लेसिबो स्टडीज में एक प्रमुख शोधकर्ता भी हैं।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका बैकग्राउंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का है।
हाँ, उन्होंने हार्वर्ड से माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में PhD की है और पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स भी।
तो ये एक तरह का मतलब अनोखा संगम है, एक तरफ जेनेटिक्स जैसी हार्ड साइंस।
हाँ, और दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ और प्लेसिबो स्टडीज का क्लिनिकल अनुभव।
हाँ, कुछ सूत्रों ने सिजिशन साइंटिस्ट भी बताते हैं। फार्माकोजेनोमिक्स और दर्द के इलाज में उनकी विशेषज्ञता है।
फार्माकोजेनोमिक्स यानी दवाइयों पर जेनेटिक असर का अध्ययन।
सही।
और उनकी सबसे बड़ी पहचान या कहें उनका सबसे अनोखा काम वो है प्लेसिबो प्रभाव के जेनेटिक्स पर।
अच्छा,
जेनेटिक्स और प्लेसिबो, ये कैसे जुड़ा?
उन्होंने और उनकी टीम ने पहली बार एक खास जेनेटिक मार्कर की पहचान की। एक जीन है COMT, उसमें एक बदलाव।
COMT जीन?
हाँ, इस बदलाव से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति प्लेसिबो पर ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया दे सकता है।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही नई बात है।
है ना? मतलब वो जेनेटिक्स के लेंस से उस चीज को देख रही हैं जिसे लोग अक्सर सिर्फ मनोविज्ञान मानते थे।
तो वो इसमें एक वैज्ञानिक कठोरता, एक बायोलॉजिकल आधार ला रही हैं।
बिल्कुल, वो कह रही हैं कि हमारा DNA तक ये तय कर सकता है कि हम किसी इलाज, किसी उम्मीद पर कैसे रिएक्ट करेंगे।
बहुत दिलचस्प। तो चलिए अब किताब पर आते हैं। प्लेसिबोस, इसका मुख्य संदेश क्या है? क्या कहना चाहती है ये किताब?
देखिए, ये किताब प्लेसिबो को उस छवि से बाहर निकालती है कि ये कोई नकली दवा है या धोखा है।
हाँ, वो स्टीरियोटाइप तो है ही।
ये उसे विज्ञान के एक जरूरी और शक्तिशाली हिस्से के तौर पर देखती है। हॉल का मुख्य तर्क ये है कि प्लेसिबो प्रभाव कोई वहम नहीं है,
बल्कि
एक असली, नापी जा सकने वाली न्यूरोबायोलॉजिकल घटना है। मतलब हमारे दिमाग और शरीर में सच में कुछ होता है।
ओके, तो ये किताब कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढती है, जैसे प्लेसिबो आखिर है क्या?
हाँ, ये है क्या? ये शरीर में काम कैसे करता है? और सबसे जरूरी, क्या हम इस अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल नैतिकता के साथ कर सकते हैं बिना धोखे के?
ये आखिरी सवाल बहुत अहम है।
बिल्कुल, किताब प्लेसिबो को क्लिनिकल ट्रायल में आने वाली कोई रुकावट नहीं मानती,
बल्कि
उसे इंसान की ठीक होने की क्षमता का एक बुनियादी हिस्सा मानती है। एक ऐसा पहलू जिसे हम अब जाकर समझना शुरू कर रहे हैं।
ये तो पश्चिम की उस सोच को सीधी चुनौती है जो मन और शरीर को हमेशा अलग अलग दिखती आई है।
सही कहा। किताब का लक्ष्य है हमें प्लेसिबो की गहराई और उसकी संभावनाओं से रूबरू कराना।
तो फिर शुरू करें इसकी गहराइयों में उतरना। कहाँ से शुरू करें? इतिहास से?
हाँ, वो अच्छा रहेगा। ये प्लेसिबो शब्द कहाँ से आया?
ये लैटिन भाषा का शब्द है, मतलब है मैं प्रसन्न करूंगा।
अच्छा, आई विल प्लीज।
हाँ, पहले इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग होता था, जैसे मध्य युग में उन लोगों के लिए जो शायद झूठा दुखड़ा रोते थे।
ओह।
चिकित्सा में इसका जिक्र 18वीं सदी के अंत में मिलता है, जहां इसे बस एक आम दवा या तरीका बताया गया।
और डॉक्टर्स इसे इस्तेमाल भी करते थे ना, शायद मरीज को तसल्ली देने के लिए जब कोई असली इलाज ना हो।
बिल्कुल, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आया 1955 में।
हेनरी बीचर, उनका वो मशहूर पेपर द पावरफुल प्लेसिबो।
हाँ, बीचर ने कई क्लिनिकल ट्रायल्स का विश्लेषण किया और पाया कि किसी दवा के असर का लगभग 35% हिस्सा प्लेसिबो प्रभाव हो सकता है।
35%? ये तो बहुत ज्यादा है।
हाँ, इसी के बाद रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल RCT का चलन बढ़ा, मतलब वो तरीका जिससे नई दवाओं को परखा जाता है।
जिसमें एक ग्रुप को असली दवा देते हैं और दूसरे को प्लेसिबो यानी नकली दवा।
बिल्कुल, लेकिन जैसा हॉल बताती हैं, इसका एक अनचाहा नतीजा ये हुआ कि प्लेसिबो को एक दुश्मन या रुकावट जैसा मान लिया गया।
हाँ, जिसे बस कंट्रोल करना है, हटाना है, ताकि असली दवा का असर पता चले। उसे समझने की कोशिश कम हुई।
तो आज की परिभाषा क्या है? प्लेसिबो प्रभाव मतलब सेहत में कोई भी ऐसा सुधार जिसे हम दी गई असली दवा या इलाज से नहीं जोड़ सकते।
और यहीं से वो पहली शुरू होती है। एक निष्क्रिय चीज जैसे चीनी की गोली कैसे कोई सक्रिय असर दिखा सकती है?
लेकिन किताब बताती है कि बात सिर्फ चीनी की गोलियों तक ही सीमित नहीं है, प्लेसिबो के तो कई चेहरे हैं।
हाँ, ये बहुत रोचक है। स्टडीज दिखाती हैं कि इंजेक्शन वाली प्लेसिबो गोली वाली प्लेसिबो से ज्यादा असरदार हो सकती है।
अच्छा, इंजेक्शन ज्यादा पावरफुल लगता है शायद।
हाँ, शायद यही बात है। महंगी या ब्रांडेड दिखने वाली प्लेसिबो गोली सस्ती या जेनेरिक दिखने वाली गोली से बेहतर काम करती है।
कमाल है, मतलब पैकेजिंग भी मायने रखती है।
बिल्कुल, यहाँ तक कि गोली का रंग भी। कहते हैं नीली गोली शांत करती है, लाल गोली ज्यादा उत्तेजक असर दिखा सकती है।
और वो बात भी कि दो प्लेसिबो गोलियां एक से बेहतर काम करती हैं।
हाँ, मतलब ये सिर्फ गोली की केमिस्ट्री नहीं है, उसके साथ जुड़ी हर चीज असर डाल रही है।
और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले उदाहरण तो शायद नकली सर्जरी के हैं, शैम सर्जरी।
हाँ, किताब में डॉक्टर ब्रूस मोसेली के घुटने के दर्द वाले अध्ययन का जिक्र है, ऑस्टियोआर्थराइटिस।
हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था। उसमें कुछ मरीजों की असली सर्जरी हुई,
कुछ के घुटने की सिर्फ सफाई की गई,
और कुछ की
नकली सर्जरी। मतलब सर्जन ने चीरा लगाया, औजार अंदर डाले, ऐसे बात की जैसे सर्जरी हो रही हो,
पर असल में कुछ किया नहीं और टांके लगा दिए।
और नतीजे हैरान करने वाले थे। जिनकी नकली सर्जरी हुई उन्हें भी दर्द में उतना ही आराम मिला और उनके घुटने उतने ही बेहतर काम करने लगे जितना असली सर्जरी वालों के।
क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ चीरा लगाने से उतना ही आराम?
हाँ, और ऐसे ही नतीजे पार्किंसंस बीमारी के मरीजों में भी देखे गए हैं, जहाँ प्लेसिबो सर्जरी ने असर दिखाया।
तो इसका निचोड़ क्या है, इसका मतलब क्या समझे?
निचोड़ ये है कि प्लेसिबो सिर्फ वो चीज नहीं है जो दी जा रही है, गोलियां इंजेक्शन, बल्कि वो पूरा माहौल, वो पूरा संदर्भ है जिसमें इलाज हो रहा है।
मतलब डॉक्टर का आत्मविश्वास।
हाँ, इलाज कितना शक्तिशाली माना जा रहा है, इलाज की पूरी प्रक्रिया, वो रस्म, ये सब मिलके प्लेसिबो प्रभाव बनाते हैं।
तो इलाज का संदर्भ ही इलाज का हिस्सा है।
बिल्कुल, द कॉन्टेक्स्ट इज द क्योर पार्टली।
इतने सारे उदाहरण देखने के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर ये होता कैसे है, मतलब शरीर के अंदर क्या चल रहा होता है।
हाँ, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? किताब इसे न्यूरोबायोलॉजी के स्तर पर समझाती है।
न्यूरोबायोलॉजी, दिमाग का विज्ञान।
हमारा दिमाग एक तरह की भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। जब हम उम्मीद करते हैं कि कोई इलाज काम करेगा, तो ये उम्मीद हमारे दिमाग के अंदर की केमिकल फैक्ट्री को, आप कह सकते हैं, चालू कर देती है।
केमिकल फैक्ट्री मतलब केमिकल्स निकलते हैं।
हाँ, इसमें दो खास केमिकल सिस्टम का जिक्र आता है। पहला है एंडोजीनियस ओपियोइड सिस्टम।
ओपियोइड जैसे मॉर्फिन।
बिल्कुल, ये हमारे शरीर का अपना दर्द निवारक सिस्टम है। ये एंडोर्फिन जैसे केमिकल बनाता है, शरीर का अपना मॉर्फिन। जब मरीजों को दर्द के लिए प्लेसिबो दिया जाता है तो उनका दिमाग यही एंडोर्फिन रिलीज करता है,
जिससे उन्हें सच में दर्द में आराम मिलता है।
हाँ, सच में, और ये बात साबित भी हुई है। जब प्लेसिबो से आराम पाए मरीजों को नालोक्सोन नाम की दवा दी गई जो ओपियोइड के असर को ब्लॉक करती है, तो उनका प्लेसिबो से मिला आराम गायब हो गया।
अच्छा, तो ये पक्का हो गया कि दिमाग ने सच में दर्द निवारक केमिकल छोड़े थे, ये सिर्फ सोच नहीं थी।
सही कहा। दूसरा अहम सिस्टम है डोपामाइन पाथवे।
डोपामाइन, ये तो खुशी और इनाम से जुड़ा है।
हाँ, खुशी, इनाम, प्रेरणा, सीखना, इन सब से। पार्किंसंस बीमारी में इसी डोपामाइन की कमी हो जाती है। स्टडीज में देखा गया कि जब पार्किंसंस के मरीजों को प्लेसिबो दिया गया ये कहकर कि ये एक बहुत असरदार नई दवा है,
तो क्या हुआ?
तो उनके दिमाग में डोपामाइन का स्तर सचमुच बढ़ गया। मतलब दिमाग को लगा कि असली दवा मिल रही है और उसने खुद ही वो केमिकल बना दिया जिसकी कमी थी।
ये तो कमाल है। इसमें जॉन कार जुबिएटा, टोर वेगर, फब्रिजियो बेनेडिट्टी जैसे शोधकर्ताओं का काम बहुत महत्वपूर्ण है ना?
हाँ बिल्कुल, उनका काम फाउंडेशनल है इस फील्ड में।
और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे देखा भी गया है।
हाँ, ब्रेन इमेजिंग तकनीक जैसे fMRI और पीट स्कैन से वैज्ञानिकों ने देखा है कि प्लेसिबो लेते समय दिमाग के कुछ खास हिस्सों में जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, गतिविधि वाकई बदल जाती है।
बिल्कुल, रियल बायोलॉजी एट वर्क। और यहीं पर कैथरीन हॉल का वो अनोखा योगदान आता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी।
हाँ, प्लेसिबो और जीन्स का रिश्ता।
हाँ, प्लेसिबो ओमिक्स। प्लेसिबो ओमिक्स ये आइडिया कि हमारे जीन्स भी तय कर सकते हैं कि हम प्लेसिबो पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे।
और इसमें वो COMT जीन अहम है।
हाँ, उनका मुख्य फोकस रहा COMT जीन पर। ये जीन एक एंजाइम बनाता है जो डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को दिमाग में तोड़ने का काम करता है।
अच्छा।
अब इस COMT जीन के अलग अलग रूप होते हैं। कुछ लोगों में ये एंजाइम धीरे काम करता है जिससे उनके दिमाग में डोपामीन का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है। इन्हें MET जीनोटाइप कहते हैं।
और मजाक में इन्हें वॉरियर्स कहा गया।
हाँ, और दूसरों में ये एंजाइम तेजी से काम करता है जिससे डोपामीन का लेवल थोड़ा कम रहता है। इन्हें वैल जीनोटाइप या वॉरियर्स कहा गया।
तो इसका प्लेसिबो से क्या कनेक्शन निकला?
सबसे हैरत की बात ये सामने आई कि जिन लोगों में ये धीमा वाला यानी हाई डोपामाइन वाला MET जीन होता है वो प्लेसिबो के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं, खासकर दर्द के मामलों में।
अरे वाह, मतलब प्लेसिबो पर प्रतिक्रिया देना सिर्फ हमारी सोच या पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है,
ये हमारी बायोलॉजी, हमारे जेनेटिक्स में भी लिखा हो सकता है।
ये तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलता है।
सही कहा। भविष्य में शायद डॉक्टर सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सी दवा दें, बल्कि ये भी देखेंगे कि इस मरीज के जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से किस तरह का इलाज या माहौल सबसे ज्यादा असरदार होगा।
लेकिन जैसे हर कहानी के दो पहलू होते हैं, इस उम्मीद की ताकत का कोई अंधेरा पहलू भी है।
हाँ बिल्कुल है, उसे कहते हैं नोसीबो, NOCEBO।
नोसीबो, ये प्लेसिबो का उल्टा है।
हाँ, लैटिन में इसका मतलब है मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। मतलब जैसे पॉजिटिव उम्मीदें फायदा कर सकती हैं, वैसे ही नेगेटिव उम्मीदें सचमुच का नुकसान भी कर सकती हैं।
ओ, इसके उदाहरण क्या हैं?
जैसे क्लिनिकल ट्रायल में जिन लोगों को प्लेसिबो दी जाती है उनमें से भी कुछ लोग साइड इफेक्ट्स महसूस करते हैं।
क्यों?
सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बताया गया था कि दवा के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
सिर्फ सुनने भर से?
हाँ, या किसी को सिर्फ ये बताने पर कि उसने जहरीली पत्ती छू ली है उसे असल में रैश हो जाना जबकि पत्ती बिल्कुल हानि रहित थी।
ये तो चिंता की बात है।
और कुछ गंभीर मामलों में तो वूडो डेथ या मेडिकल हेक्सिंग जैसी चीजें भी रिपोर्ट की गई हैं, जहां किसी नेगेटिव भविष्यवाणी पर गहरा विश्वास व्यक्ति की सेहत को बुरी तरह बिगाड़ देता है।
इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है?
इसमें अक्सर चिंता, एंग्जाइटी वाले दिमागी रास्ते और तनाव वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एक और केमिकल कोलेसिस्टोकिनिन CCK शामिल होते हैं। ये केमिकल दर्द के संकेतों को बढ़ा सकते हैं या शरीर में नेगेटिव बदलाव ला सकते हैं।
ये तो डॉक्टरों और स्वास्थ्य से जुड़े सभी लोगों के लिए एक बड़ी मतलब चेतावनी है।
बिल्कुल, बात करते समय शब्दों का कितना महत्व है। जानकारी कैसे दी जा रही है उससे मरीज पर पॉजिटिव प्लेसिबो या नेगेटिव नोसीबो असर पड़ सकता है। उम्मीद वाकई एक दो धारी तलवार है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि इस प्लेसिबो की ताकत का इस्तेमाल क्लिनिक में कैसे किया जाए, खासकर जब हम जानते हैं कि पारंपरिक रूप से इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा धोखा शामिल रहा है।
सही सवाल है, क्या कोई नैतिक तरीका है?
हाँ,
यही पर किताब एक बहुत ही दिलचस्प और क्रांतिकारी आइडिया सामने रखती है, ओपन लेबल प्लेसिबो।
ओपन लेबल प्लेसिबो यानी खुला प्लेसिबो या ईमानदार प्लेसिबो?
हाँ,
मतलब मरीज को बताकर प्लेसिबो देना।
ये कैसे काम कर सकता?
अगर मरीज को पता है कि गोली में कुछ नहीं है तो असर कैसे होगा? ये तो अजीब है।
यही तो चौंकाने वाली बात है। किताब में हार्वर्ड के ही एक और शोधकर्ता टेड कपचुक के इरिटेबल बॉल सिंड्रोम IBS पर किए गए अध्ययनों का जिक्र है। IBS पेट की एक आम समस्या है।
हाँ, IBS के बारे में सुना है।
इन स्टडीज में मरीजों को साफ साफ बताया गया कि उन्हें जो गोलियां दी जा रही हैं वो प्लेसिबो हैं, उनमें कोई दवा नहीं है। बोतल पर भी प्लेसिबो पिल्स लिखा था।
सच में? और फिर
उन्हें यह भी समझाया गया कि प्लेसिबो कैसे काम कर सकता है शरीर की अपनी उपचार शक्तियों को जगाकर।
और नतीजा क्या हुआ उन मरीजों का?
नतीजा ये कि जिन मरीजों ने जानते हुए प्लेसिबो ली उनके IBS के लक्षणों में उन मरीजों की तुलना में काफी ज्यादा सुधार हुआ जिन्हें कोई इलाज नहीं मिला था।
ये कैसे मुमकिन है? मतलब पता होने के बाद भी असर हुआ?
हाँ, ये दिखाता है कि प्लेसिबो की शक्ति शायद सिर्फ धोखे में नहीं है।
तो फिर किस चीज में है?
शायद इलाज की रसम में है, रिचुअल में,
डॉक्टर और मरीज के बीच भरोसे वाले रिश्ते में है और मरीज को ये एहसास दिलाने में कि उसके अपने शरीर में भी ठीक होने की ताकत है।
ये एक तरह से मरीज को सशक्त बनाता है।
बिल्कुल, ओपन लेबल प्लेसिबो मरीज को इलाज की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। ये दवा के भविष्य की एक झलक हो सकती है जहां ईमानदारी और नैतिकता के साथ शरीर की अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल किया जाए।
वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब से निकलने वाले मुख्य संदेश या की थीम्स क्या हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश है, मन शरीर का कनेक्शन सिर्फ एक कहावत नहीं, एक बायोलॉजिकल सच्चाई है।
हाँ, ये बात तो बार बार सामने आई।
हमारे विचार, हमारी उम्मीदें, हमारे विश्वास, ये सब हमारे दिमाग में केमिकल बदलाव लाते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स, डोपामीन।
और इन बदलावों से शरीर पर असली असर पड़ता है, जैसे दर्द कम होना।
बिल्कुल, ये पश्चिम की उस सोच को चुनौती देता है जो मन और शरीर को अलग करके देखती है।
दूसरा अहम मुद्दा, मुझे लगता है इलाज में रस्म और संदर्भ की ताकत है।
हाँ, इलाज का मतलब सिर्फ गोली या सुई में मौजूद दवा नहीं है, डॉक्टर का व्यवहार कैसा है, क्लिनिक का माहौल कैसा है, दवा किस तरह दी जा रही है,
ये सब शक्तिशाली संकेत हैं जो हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया को तय करते हैं। डॉक्टर मरीज का रिश्ता खुद एक इलाज का हिस्सा बन सकता है।
भारत में हम अक्सर देखते हैं कि लोगों का किसी खास डॉक्टर पर कितना गहरा भरोसा होता है, शायद उस भरोसे का भी ठीक होने में एक बायोलॉजिकल रोल होता हो।
हाँ, हो सकता है। तीसरा,
हम सब प्लेसिबो पर एक जैसा रिएक्ट नहीं करते, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता है।
और ये भिन्नता, जैसा हॉल ने दिखाया, हमारी जीन्स में भी हो सकती है, वो COMT जीन वाली बात।
सही, ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
चौथा, नैतिकता का सवाल और ओपन लेबल प्लेसिबो का रास्ता।
हाँ, ये दिखाता है कि प्लेसिबो का फायदा उठाने के लिए हमेशा धोखे की जरूरत नहीं है। इलाज की प्रक्रिया और सकारात्मक माहौल पर ध्यान देकर भी ईमानदारी के साथ मरीज की अपनी हीलिंग पावर को जगाया जा सकता है।
और पांचवा,
उम्मीद की वो दोधारी तलवार, प्लेसिबो और नोसिबो।
हाँ, के पॉजिटिव उम्मीदें जहां हमें बेहतर महसूस करा सकती हैं, वहीं नेगेटिव सोच या डर सचमुच हमें बीमार कर सकता है या लक्षणों को बढ़ा सकता है।
ये डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए संचार यानी कम्युनिकेशन के महत्व को रेखांकित करता है।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी हैं जो इन आइडियाज को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। जैसे एक विचार है कि
प्लेसिबो प्रभाव सिर्फ पॉजिटिव सोचने की ताकत नहीं है, ये पॉजिटिव विश्वास की ताकत है जिसे न्यूरोबायोलॉजी का सहारा मिला हुआ है।
मतलब ये सिर्फ सोच नहीं, दिमाग और शरीर का विज्ञान है।
बिल्कुल, या ये कि हर इलाज, चाहे वो गोली हो, इंजेक्शन हो या सर्जरी, उम्मीदों के एक संदर्भ में होता है, और वो संदर्भ अपने आप में इलाज का हिस्सा है।
ये याद दिलाता है कि इलाज के हर पहलू पर ध्यान देना जरूरी है, छोटी से छोटी चीज पर भी।
और जेनेटिक्स वाली बात, हम सब प्लेसिबो के प्रति एक समान प्रतिक्रिया नहीं देते, और ये व्यक्तिगत अंतर हमारे जीन्स में लिखा है।
ये भविष्य की दवा के लिए एक दिशा दिखाता है, पर्सनलाइज्ड अप्रोच।
और नैतिकता पर ईमानदार प्लेसिबो शायद चिकित्सा के भविष्य की तरफ इशारा करते हैं, जहां मरीज की स्वायत्तता और विश्वास बनाए रखते हुए शरीर के अपने उपचार तंत्र का इस्तेमाल किया जाए।
ये सारी बातें बहुत सोचने पर मजबूर करती हैं। अब सबसे काम की बात, इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकती है, मरीजों या आम लोगों के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं?
सबसे पहली बात तो शायद ये कि खुद को इलाज की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार समझें, सिर्फ निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, अपनी सोच, अपनी उम्मीदों के असर को पहचानें।
सही।
दूसरी बात, अपने डॉक्टर के साथ एक अच्छा भरोसे वाला रिश्ता बनाने की कोशिश करें, उस रिश्ते का भी हीलिंग पर असर पड़ सकता है।
तीसरी, वो नोसिबो प्रभाव से सावधान रहें, जैसे किसी दवा के साइड इफेक्ट्स की लिस्ट को पढ़कर ये ना मान लें कि वो सब आपको होंगे ही।
हाँ, वो डर पैदा कर सकता है।
और चौथी, अपने स्वास्थ्य से जुड़े कामों के आसपास सकारात्मक रस्में या आदतें बनाएं।
जैसे
आराम से ध्यान देकर सेहतमंद खाना बनाना या रोजाना एक निश्चित समय पर टहलना। ये छोटे छोटे अनुष्ठान भी संकेत दे सकते हैं शरीर को।
और डॉक्टरों या हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए क्या संदेश है इसमें?
उनके लिए सबसे जरूरी है सहानुभूति और आत्मविश्वास से भरा संवाद। उनका व्यवहार, उनका बेडसाइड मैनर सिर्फ अच्छी आदत नहीं, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल हस्तक्षेप है।
वाओ, बेडसाइड मैनर एक न्यूरोबायोलॉजिकल हस्तक्षेप, ये तो बहुत पावरफुल बात है।
हाँ, और कुछ खास स्थितियों में, जैसे पुराने दर्द या IBS में, ओपन लेबल प्लेसिबो के इस्तेमाल पर विचार किया जा सकता है।
और जानकारी देते समय शब्दों का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए ताकि अनजाने में नोसीबो प्रभाव पैदा न हो।
बिल्कुल, पूरे इलाज के माहौल को, उस कॉन्टेक्स्ट को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
और जो लोग रिसर्च या दवा बनाने के काम में हैं, उनके लिए क्या टेक अवे है?
उन्हें क्लिनिकल ट्रायल्स को सिर्फ दवा के असर को नापने के लिए नहीं बल्कि प्लेसिबो प्रभाव को समझने के लिए भी डिजाइन करना चाहिए। उसे सिर्फ कंट्रोल करने की चीज ना समझें।
और वो जेनेटिक मार्कर वाली बात, COMT जैसे?
हाँ, उनका इस्तेमाल शायद ट्रायल्स को ज्यादा प्रभावी बना सकता है। और कौन जाने, भविष्य में ऐसे इलाज भी विकसित हों जो दवा के साथ साथ प्लेसिबो प्रभाव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हों।
जैसे गोली का खास डिजाइन या उसे देने का कोई खास तरीका?
हाँ बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज हैं।
तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा सबक या सबसे दिलचस्प बात क्या रही? क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक होना सिर्फ बाहर से मिली दवा या इलाज पर निर्भर नहीं करता। ये हमारे अंदर की दुनिया, हमारी उम्मीदें, हमारे विश्वास, हमारी बायोलॉजी और बाहरी दुनिया के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत है। मन का शरीर पर असर कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। इसे समझना हमें अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा कंट्रोल दे सकता है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि प्लेसिबो असली है, इसका असर नापा जा सकता है और इसे ईमानदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इलाज का माहौल, डॉक्टर का व्यवहार, ये सब शायद दवा जितनी ही अहमियत रखते हैं। कैथरीन हॉल का काम हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की एक अद्भुत क्षमता है।
और विश्वास, उम्मीद और मानवीय रिश्ता उस क्षमता को जगाने वाले शक्तिशाली जैविक कारक हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकथ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।